हाजी साहब, आपका करम है, आप जितनी कीमत लगाएंगे मैं देने को तैयार हूं।
गुलाम रजा साहब, आपकी नजर में मुनासिब कीमत क्या होगी?
हमारी भेड़ें इस इलाके में बेमिसाल है मौलाना।
बेटे, दलाल के पास तो आए नहीं हैं, ऐसी कीमत लगाओ कि मौलाना साहब भी राजी हों और अकबर साहब भी।
बहरहाल आप लोग जैसा कहें मुझे एतराज नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप इंसाफ पसंद हैं।
कैसी बातें कर रहे हैं हाजी साहब, आप जैसा कहें मैं तैयार हूँ।
सौदे में बरकत के लिए एक सलवात भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मेरी एक और गुजारिश ये है कि हमारे इस गुलाम रजा को अपने काम पे रहने दें, क्योंकि ये एक अच्छा और काम वाला बंदा है।
क्या कह रहे हैं हाजी साहब, इस गुलाम रजा की जगह मेरे ही पास है। बेटा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना।
क्या मैं अपना कुत्ता भी यहाँ रख सकता हूँ? बहुत वफादार।
कुत्ते में वफादारी ढूंढने से क्या फायदा, इंसानों में वफा ढूंढो, जो अगर होती तो मौलाना साहब को अपने मवेशी न बेचने पड़ते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, खुदा ने उन्हें भेड़ का तोहफा भेजा। आपने एक बेटे को राह खुदा में दिया और दूसरे के लिए भेड़े दे रहे हैं।
खुदा हमारे इस बेटे की आखबत भी हजरत इब्राहिम के बेटे की तरह
बख्शे। आमीन।
हाजी साहब, मुझे अकेले में आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी।
हमें इजाजत दीजिए, आप बात करें।
जी आप जाइए,
चलते हैं। बहुत शुक्रिया।
जी फरमाइए।
माजरत चाहता हूँ हाजी साहब, मैं नहीं जानता कि इस अहमद अली ने मेरे पीठ पीछे आपसे क्या कहा है। आप यकीन कीजिए कि मेरी उलमा हजरात से कोई दुश्मनी नहीं है, आपको तो मेरी हालत का पता है। मैं खुद भी हैरान हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बताइए।
बरात अली उलमा का लिबास पहनने की सलाहियत रखता है, लेकिन मैंने उसे कहा है कि फिलहाल ये मसलहत नहीं है कि ये तालीम जारी रखी जाए। अब रह जाता है आपके और अहमद अली के दरमियान पुराना मसला, वो पता नहीं हल होने में इतना लंबा वक्त क्यों ले रहा है।
हाजी साहब, आपको तो पता है कि ये अहमद अली जहाँ भी जाता है मेरे पीठ पीछे क्या कहता है, और लोग भी जो जानते हैं कि उसका आपसे करीबी ताल्लुक है तो ये सोचते हैं कि जो कह रहा है वो सच कह रहा है।
अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल नाराजगी गीबत का सबब बनती है और गीबत कीने का।
जी
कहा गया है कि नाराजगी को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए।
ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलाना साहब आप भी ना, आपकी आमद सर आंखों पर। मैं उस छोटे कमरे में चला जाता हूँ।
नहीं, वो जगह तंग है मेरे भाई।
जगह की तंगी आखिरत के घर की तैयारी है। बड़ा कमरा हाजिया साहिबा के लिए भी बेहतर रहेगा।
खुदा तुम्हारा भला करे, तो बस अब किराया बताओ ताकि हम अपना सामान यहाँ ले आए।
आप मेरी तोहीन कर रहे हैं खुदा के बंदे। आपके पास पैसे ही कहाँ हैं? आपने तो अपना सब कुछ औने पौने बेच दिया, मुझे तो दूसरे लोगों की तरह ना समझे।
अगर आज ही तुमने उस जगह का किराया नहीं बताया तो मैं किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा।
ला इलाहा इल्लल्लाह।
कौन है?
मैं मुस्तफा साहब के साथ आया हूँ।
आ जाइए।
आपने मुझे उलझन में डाल दिया हाजी साहब, मैं आपसे किराया कैसे लूं?
वैसे ही जैसे किसी और को किराए पर देते तो उससे किराया लेते।
क्या कहूं?
आ जाओ चलो।
या अल्लाह या अल्लाह।
अगर मुझे पता होता तुम इसलिए आई हो तो दरवाजा कभी ना खोलती।
दरवाजा ना खोलने से हकीकत बदल जाती क्या?
हमारे खानदान के बुजुर्ग गस्बशुदा जमीन पे बैठकर लोगों के शरई सवालात का जवाब देते हैं, यही हकीकत चाहिए थी तुम्हें?
मेरी पूरी जिंदगी में हकीकत वही रही जो मुझे पसंद नहीं थी। अब भी मेरी बेटी को जेल होने वाली है। उसके ससुर के पास उन जमीनों का इख्तियार है जिनसे वो बच सकती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन है कि हमारे बाप गलती पे नहीं थे, यही वजह है। नबाद दूं?
नहीं।
अब मुझे अपनी बहन को राजी करना होगा कि इन जमीनों को हासिल करने के लिए उस आदमी की शिकायत करे। अब ये आदमी कौन है? ये खानदान का वो है जिसने मुझे कभी नहीं सताया। आप क्या सोचती हैं, ये बात मुझे काबिल पसंद है? नहीं मेरी बहन, मेरा भी बहुत दिल करता था कि दुनिया में जिंदगी की हकीकतों के लिए इतना लड़ना ना पड़े। मैं भी आपकी तरह घराने की अच्छी लड़की होती, मगर अब मुझे आदत हो गई है कि कुछ भी हासिल करने के लिए सख्तियों से गुजरूं।
तुम अब भी अपनी जिद पर अड़ी हो। मुश्किलात के बारे में तुम्हें अपना नज़रिया बदलना होगा। लाल चश्मा पहनोगी तो शलगम भी चुकंदर नज़र आएगा। चश्मा उतारो, सभी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। میری بہن جانتی ہو تمہیں تکلیف پہنچی اور سختیوں سے گزری ہو, لیکن ابھی تلک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے.
کیا ہر حال میں مجھے نقصان اٹھانا چاہیے؟ کیا ہر دفعہ میں ہی گھاٹے میں رہوں؟ معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا, آپ تو جانتی ہیں میرا مطلب کچھ اور تھا. میری زبان ذرا لمبی ہے پر گستاخ نہیں ہے.
میں شہیدی صاحب کے خلاف شکایت نہیں کروں گی.
سمجھ گئی. میں اپنا حصہ لینے کے لیے عدالت جاؤں گی. آپ بھی اپنے حصے سے حاجی صاحب کا مدرسہ قائم رکھ سکتی ہیں, اس طرح سب خوش رہیں گے.
خدا افتخار
خدا کے لیے بس کریں, ان سب باتوں سے تھک گئی ہوں میں.
امی جان سلام.
سلام. ابھی تک تمہارے منہ سے ماں سننے کی عادت نہیں ہوئی. زہرا نے بتایا وہ مجھے تم سے بہتر جانتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ تم میری رائے نہیں بدل سکتی.
پتا ہے, مگر میں نے سوچا شاید میں آپ کا ارادہ بدل سکوں.
غلط سوچا ہے. بجائے اس کے کہ میری رائے بدلنے کا سوچو, جاؤ جا کے حاجی صاحب کی سوچ بدلو. تم سمجھتی ہو میں نے یوں ہی ایک بات کہہ دی کہ دیکھو میری رائے بدل سکتی ہے یا نہیں؟
جی ٹھیک ہے, میں ان سے بات کرتی ہوں, لیکن آپ ابھی شکایت مت کیجیے.
میں کہتی ہوں تم غلط سوچ رہی ہو. کسی نے ہمیں ساتھ دیکھ لیا تو یہی سوچے گا کہ اپنے سسر کی شکایت کرنے آئی ہو. جاؤ.
سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں, میرا دماغ نہیں کام کر رہا ہے. تم نے ابھی اپنی ماں کو پہچانا ہے, مگر میں عرصے سے اس کو جانتا ہوں. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس نے کسی کے کہنے پر اپنا ارادہ بدلا ہو. جانتی ہو مائدہ بیٹی, میلا دل میلے برتن کی طرح ہوتا ہے, جس میں جتنا بھی صاف پانی ڈالو گی میلا ہوتا جائے گا.
خدا کے لیے آپ کچھ کیجیے.
تم گھر چلی جاؤ بیٹی, گھر چلی جاؤ. میں شام تک ایک دو لوگوں سے مشورہ کر کے تمہاری ماں کے پاس جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. عجیب مسئلہ بن گیا ہے.
کاش میری زبان بند ہو گئی ہوتی اور تمہارے شوہر سے اس کمینے مرادی کی پہچان نہ کرائی ہوتی. لیکن خدا پر بھروسہ رکھو. تمہیں یقین ہے کہ وہ کچہری چلی گئی ہے؟
جی ہاں.
عجیب بات ہے. حاجی صاحبہ کو میرا سلام کہو. جاؤ بیٹی.
ٹھیک ہے, لیکن مجھے بے خبر نہ رکھیے گا.
ٹھیک ہے, اطمینان رکھو.
خدا حافظ.
ہیلو, تو کیسے ہیں محمود صاحب؟ ارے نہیں بھائی, کیسی حالت؟ تم نے بھی اگر ماجرا سنا ہوتا تو ہوش کھو بیٹھتے. اب منت مراد مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا, اب تو شہیدی صاحب کو بھگتنا پڑے گا سب کچھ. یہ سب معاملہ اب انہی سے ربط رکھتا ہے.
حاجی صاحب, ہمارے ایک دور کے رشتے دار نے مہربانی کر کے ہماری ضمانت کے لیے اپنے گھر کے کاغذات گروی رکھوا لیے. بیچارے نے صرف 6 مہینہ پہلے یہ گھر خریدا ہے.
اس کا بھلا کرے, بھلا کرے اس کا.
سلام حاجی صاحب.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب, میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا, یہ لیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا.
کوئی بات نہیں, دعا کیجیے ہماری.
مہربانی حاجی صاحب, ہم آپ کی دعا کے محتاج ہیں.
سلام حاجی صاحب.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب, محمد حسین کے مسئلے کے بارے میں ان سے کہہ دیں کہ میری طرف سے فکر مند نہ ہو, انشاءاللہ جب بھی مسئلہ حل ہو جائے اس وقت میرے پیسے لوٹا دیں. ہماری بیٹی کی خوشیاں تو برباد ہی ہو گئی.
انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا.
انشاءاللہ, اگر اجازت ہو تو میں چلتا.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
حجت الاسلام برات علی محبی،
سلام علیکم۔
علیکم سلام حاجی صاحب۔
احمد علی صاحب، اسے طالب علموں کے لیے باورچی خانے میں لے جائیں مہربانی کر کے۔
ٹھیک ہے حاجی صاحب۔ حاجی صاحب، جناب عسکری نے کئی بار فون کیا، بہت پریشان اور ناراض تھے، بار بار پوچھ رہے تھے کہ مولانا صاحب کہاں ہیں، میں آ کے ملنا چاہتا ہوں، انہیں ایک فون کر دیجئے۔
میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے مل لوں گا یا فون کر لوں گا۔
بہت اچھا۔ حاجی صاحب، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟
نہیں، ناراض نہیں ہوں۔ جوانی میں میرے پاس ایک گھوڑا تھا، جب میں اس پر سوار ہو کر دیوار کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ اپنے سائے کو دوسرا گھوڑا سمجھتا اور اس کے ساتھ دوڑ لگاتا تھا۔ وہ اپنے سائے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا اور اس طرح مجھے بھی خطرے میں ڈال دیتا تھا۔
جی۔
جب دیوار ختم ہو جاتی اور سایہ گم ہو جاتا تو اسے چین آتا تھا۔ انسان جب دوسروں کو دیکھتا ہے احمد علی، تو اس کا جسم جو در حقیقت اس کی سواری ہوتی ہے، چاہتا ہے کہ دوسرے سے آگے نکل جائے اور اس طرح انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔
حاجی صاحب بہت شکریہ، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا۔ عرض کروں کہ آخر یہ ملک کے جج ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کو اتنی بار فون کیا، اگر آپ بھی انہیں ایک فون کر دیں گے تو آپ کا زیادہ وقت نہیں جائے گا۔
احمد علی صاحب، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کو میرے کام کی فکر ہے یا پھر آپ قاضی عسکری کے لیے فکر مند ہیں۔
معذرت چاہتا ہوں حاجی صاحب، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔
یہ کاغذات آج ہی گروی سے آزاد ہوئے ہیں، یہ بینک سے آزاد ہونے کی سند ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بس مہربانی کر کے ایک اچھا خریدار ڈھونڈ دیجئے تاکہ کل کلاں کو پڑوسی ہمیں بد دعا نہ دیں۔
آپ بے فکر رہیں حاجی صاحب۔
ایک اور بات بھی عرض کرنی تھی۔
حکم کریں۔
ایک عالم محرم کے آوازے تک اپنے گھر آنے کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں، مہربانی کر کے ہمیں گھر خالی کرنے کے لیے کچھ وقت دیجئے گا۔
ٹھیک ہے، ویسے بھی اس وقت تک خریدار کا ملنا مشکل نظر آ رہا ہے، آپ بڑے اطمینان سے مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔
اگر کسی خریدار کے پاس پیسے تیار ہوں تو میں رعایت بھی دوں گا۔ جتنا زیادہ وقت گزر رہا ہے، میں خود کو لوگوں کا اور زیادہ احسان مند اور شرمندہ محسوس کر رہا ہوں۔
آپ لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں حاجی صاحب۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کتنے کی ضرورت ہے، میں کوشش کروں گا کہ کچھ رقم قرض الحسنہ کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔
اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو یہ گھر آپ ہی خرید لیجئے۔
خدا جانتا ہے کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا ہوں، ایک کام کرتا ہوں، یہ کاغذ ضمانت کے طور پر رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اطمینان رہے، ٹھیک ہے؟
خدا آپ کا بھلا کرے، مگر میں ادھار واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بہت بہت شکریہ۔
یہ آپ کی خدمت میں۔
ختم ہو گیا، مدد نہیں کرو گی؟
کیا ہوا؟
پتا ہوتا تو کوئی تھیلا لے آتی، آخر کتنے پلاسٹک بیگ استعمال کروں۔
ایک منٹ رکے، میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہوا۔
کچھ نہیں، کہا ہے شہیدی صاحب کو بجا کے بیان دینا ہوگا۔
یعنی پیشی ہوگی؟
ہاں،
کہیں ان کو نوٹس نہ بھیج دیں۔
تمہارے لیے تو بھیجا ہے۔
اس بات کو اتنا چھوٹا کیوں سمجھ رہی ہیں آپ؟
اس لیے کہ میرے خیال میں اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔
میں کس منہ سے گھر جاؤں؟
میرے باپ نے غلطی کی، شکایت میں نے جا کے کی، محمد حسین قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تم کو شرم آ رہی ہے؟ تم آگے کی 50 سال کی زندگی کیسے گزارو گی؟
سلام علیکم۔
علیکم سلام۔
حاجی صاحب ایک منٹ۔ سلام علیکم۔
علیکم سلام۔
حاجی صاحب، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ قاضی عسکری نے فون کیا ہے، مگر آپ نے توجہ نہیں دی، अब वो समझते हैं कि मैंने आपको बताया नहीं है।
मैं कचहरी गया था पर वो मिले नहीं।
वो यहाँ आए हुए हैं, बहुत देर से आपके मुंतजर हैं।
कहाँ हैं?
कमरे में हैं, अभी उनके पास था मैं लेकिन किसी काम से इस तरफ आ गया।
अच्छा, आप जाकर अपना काम देखिए, मैं खुद उनसे मिल लेता
हूं। जी बेहतर है।
ये मेरे नाम गुलशन आबाद की ज़मीनों की मुंतकली के कागजात हैं, जिन गवाहों ने नीचे दस्तखत कर रखे हैं उनमें से एक आदमी अभी ज़िंदा है, वो इन कागजात की तस्दीक कर सकता है।
हाजी साहब, ना मुझे आपकी बातों की सच्चाई पे कोई शक है और ना अंसारी साहिबा की जिन्होंने शिकायत की है। उनका दावा अपने आप से मुतालिक है। देखिए, इन कागजात के बिना पर ये ज़मीनें हाजी हबीब की अहलिया का हक मेहर थीं। अब हमें उन कागजात की ज़रूरत है जिनसे साबित हो सके कि हाजी हबीब की अहलिया ने उनको ज़मीनें हिबा करने की इजाज़त दी है।
मेरे पास ऐसी कोई सनद नहीं है लेकिन मुझे यकीन है कि हाजी हबीब अपने काम से मुतालिक मुकम्मल जानकारी रखते थे।
हाजी साहब, ये अंसारी साहिबा भी आपके रिश्तेदार हैं, आपका एहतराम करती हैं मगर मजबूर हो गई हैं, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। मेरे ख्याल में अदालत गए बगैर किसी तरह से ये मसला इनको आपस में बिठाकर हल करा दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
मुझे ज़ाती तौर पर इन ज़मीनों से एक पैसा भी नहीं मिलता, हत्ता इनको अपने पास रखने में भी कोई नफ़ा नहीं है, मगर ये ज़मीनें वक्फ़ हैं, अगर ये वक्फ़ ना होती तो मैं इनको लौटाने में एक लम्हा की भी देर नहीं करता काजी साहब।
हाजी साहब, आप तो खुद मेरे उस्ताद हैं, बेहतर जानते हैं बगैर कागजात के किसी दूसरे की ज़मीन को तोहफे में नहीं दिया जा सकता। अब हमारी बात वक्फ़ होने से पहले की है।
आप उस वक्त जवान थे, हाजी हबीब को नहीं समझ सके। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उन जैसा शरीयत का पाबंद इंसान नहीं देखा। ये मुमकिन ही नहीं कि उन्होंने अपनी बीवी की इजाज़त के बग़ैर ज़मीनों का ट्रांसफ़र कराया हो। उनके बीच ज़रूर कोई कागज़ी या कोई ज़बानी रिजायत थी जिसकी मुझे ख़बर नहीं। दूसरी बात, हाजी हबीब की वफ़ात के बाद उनकी अहलिया ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। हाजी अस्करी साहब, मैं जानता हूं कि मेरा यकीन अदालत के लिए सबूत नहीं हो सकता लेकिन हाजी हबीब साहब ने अपनी वफ़ात से पहले मुझे वसीयत की थी, अगर उनके ज़िम्मे इतना बड़ा कर्ज़ा या दैन होता तो ज़रूर मुझसे कहते। वो खुद आपने और बहुत सारे दूसरे तालिबे इल्मों ने इसी मदरसे में तालीम हासिल की है, नमाज पढ़ी है, तदरीस की है। हाजी हबीब ऐसे आदमी नहीं थे कि आप जैसे तुल्लाब को गस्पशुदा ज़मीन में नमाज पढ़ने देते। मेरी जिम्मेदारी इस मदरसे की हिफाजत और उसको चलाना है, जितना हो सकेगा डटा रहूँगा। अगर अदालत भी जाना पड़ा तो कोई बात नहीं लेकिन इन कागजात के अलावा और कोई कागज़ मेरे पास नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया। चाय तो पियेंगे ना?
जी बोलिए।
ज़रा अपने शोहर को एक मिनट के लिए बाहर भेज दीजिए।
आपको किससे काम है?
मोहतरमा जाएं, अपने शोहर को भेज दें।
पहले आप बताइए आपको किससे काम है।
मोहतरमा जाके अपने शोहर को बाहर बुलाओ। सुनो, मैं जब तक उस बेगैरत इंसान को ढूंढ न लूं जिसने शहीदी साहब के खिलाफ शिकायत की थी, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। मैं यहीं पर रहूंगा। क्या समझ रखा है, मौलाना का कोई नहीं है?
उन्हें छोड़े जाने दे।
अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। अपने उस बेगैरत आदमी से बोलो कि बाहर आए। क्या पड़ोस में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो हमारा साथ दे?
क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठीक से बात करना नहीं सिखाया?
इसका मेरी माँ से कोई रब्त नहीं है।
करो। जिस बेगैरत ने शहीदी साहब की शिकायत की है वो मैं हूँ। क्या काम है मुझसे?
जाओ अपने आदमी को बुलाओ।
जिसको ढूंढ रहे हो मैं हूँ। जब देखा कि तुम्हारा मुकाबला एक औरत से है तो शर्म आ रही है।
ये मुझे नहीं पता था कि किसी औरत ने शहीदी साहब के खिलाफ शिकायत की है। अलबत्ता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर अपना फर्ज अदा करने आया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप किससे ऑर्डर लेती हैं, लेकिन तुम जाकर अपने मालिक से बोल दो कि हम यहाँ पर शहीदी साहब के साथ आखिरी दम तक डटे रहेंगे। समझे या नहीं?
बस करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा नाम क्या है भाई?
कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुदा का बंदा हूँ।
अच्छा तो बंदे खुदा मुझे जानते हो? मैं शहीदी साहब की बहू हूँ। अगर हिम्मत है तो अपना नाम बताओ, मैं शहीदी साहब से कहती हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम इन कामों की वजह से शहर में रह पाते हो या नहीं। ये बताओ कि तुम्हें यहाँ भेजा किसने है? मुंह उठा के चले आते हो, आखिर क्यों उनकी फैमिली की बेइज्जती करते हो?
चले जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ, जाओ यहाँ से।
चलो तुम लोग।
चैन मिल गया आपको? एक गैर मर्द के साथ बहस और हुज्जत करके खुशी मिल गई? अब पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि मौलाना साहब के घर में इख्तलाफ पैदा हो गया है। इस तरह मेरी जिंदगी का दिफा करती है?
माफ करना, वो शहीदी साहब के अकीदत मंद थे, तुम बजाय मेरे उनका दिफा कर रही हो। मुझे 2 घंटे नहीं हुए आए, उनको कैसे पता चला?
छोटा सा शहर है, जब आप ले जाके इस शहर के मोतमिद की शिकायत कर दे तो क्या आपकी नजर में लोगों को समझने के लिए 2 घंटे कम है?
तुम तो सिर्फ अपने ससुर का दिफा कर।
अम्मी, मैं किसी का दिफा नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इतनी जल्दी मत करे, मिलके सोचते हैं, शायद कोई बेहतर फैसला कर सके।
कौन सी सोच? तुम्हारी इसी सोच ने हमें दर्द सर में डाला है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरी जगह लो और मुझे नसीहत करो। लेकिन उनके यहाँ आने से मुझे खुशी।
हाँ, ये तो है, आपको इस मसले के आखिर तक जाने का बहाना मिल गया।
नहीं, मैं समझ गई कि तुम मुझ पे गई हो, वक्त आए तो शेरनी बन जाती हो।
मैं अभी तक फिक्रमंद हूं मिर्जाई, जानते हो इन जमीनों पे कितनों की नजर गड़ी हुई है। बोलते रहे, वो जमीनें तुम्हारे नाम करने के लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की। उस वक्त तुमने कहा था कि रोड का मसला 1 महीने में हल कर देंगे, 6 महीने हो गए, आज भी हल नहीं हुआ।
आप तेहरानी लोग तेज तेज चलते हैं और सबसे काम नहीं लेते। आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि आप देखें सब कुछ प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है। जब पानी डैम में चला जाएगा तो ये ज़मीनें जो खरीदी हैं मुल्क की बेहतरीन ज़मीनें होंगी। अब सिर्फ रोड का मसला रहता है, वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा।
अगर सिर्फ मैं होता तो 10 साल भी सब्र कर लेता।
आप कहते रहें,
लेकिन मुझसे और तुमसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं जिनको जवाब देना है। वो जब मैदान में आते हैं तो 40 एकड़ जमीनें तुम्हारे नाम कर देते हैं और अपना मुनाफा जल्दी हासिल करना चाहते हैं। फोन उठाओ,
मैं बाद में बात करता हूं, आप बोलिए।
वो सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं और उनकी एक बुरी आदत भी है, उनका सब्र सभी तेरानियों से कम है।
आपको सिर्फ 1 महीने बाद गुलशन आबाद की जमीनें वक्फ से निकाल कर दे दूंगा। मैं चाहता हूं गुलशन आबाद सूबे का मरकज बने, चाहता हूं वो ईरान का एक बहुत बड़ा शहर बन जाए। मुझसे ज्यादा कोई इस प्रोजेक्ट के लिए बेचैन नहीं। माफ कीजिएगा, इजाजत है?
जवाब दो।
हेलो, सलाम महमूद, कामयाब रहे या नाकाम? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मेरे भाई, इस खातून ने मौलाना साहब पे दबाव डालने के लिए उनकी बहू को यरगमाल बनाया हुआ है। तुम लोग भी तो अपने शहर के आलिम की इज्जत खराब होने नहीं दे रहे हो। शाबाश। हाँ, मेरे फोन का इंतजार करना, अगर कुछ हुआ तो मैं खुद बता दूंगा कि एक्शन लो। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा।
तुम्हारे बेटे का केस भी उलझता जा रहा है, जल्दी उसके कर्ज देकर मसला खत्म करो।
इस केस का उलझना हमारे फायदे में है कि जिसकी वजह से हमारी वक्फ शुदा जमीनें जल्दी आजाद हो जाएंगी। जब सब ठीक हो जाएगा तो बच्चों को कारोबार पे लगा देंगे।
ए इस्माइल, वहां खड़े मत रहो, जेब से हाथ निकालो। कितना टाइम हो गया तुम अब तक तरबूज लोड नहीं कर सके? तुम लोगों ने अपनी सुस्ती से मुझे परेशान करके रख दिया है। 4 तरबूज लोड करने में कितना टाइम लग जाता है तुम लोगों को? ला इलाहा इल्लल्लाह, पता नहीं क्या करने लग जाते हैं ये लोग।
उठा के ले गया। जी ऐसे क्यों देख रहे हो, अपना काम करो।
अकबर साहब ये लीजिए।
बरात अली
जी।
अरे भाई तुम इतने परेशान मत हो, मैंने खुद हाजी साहब से तुम्हारे सिलसिले में बात की है।
मेरे अब्बू से बात की है?
हाँ तो?
तो नतीजा क्या निकला?
मैं कह रहा था कि जब तुम्हारे उस्ताद को खेत में मेहनत मजदूरी करने से कोई एतराज नहीं है तो आखिरकार एक ना एक दिन तुम्हारे अब्बा मान ही जाएंगे ना।
खुदा करे ऐसा ही हो अकबर साहब।
लेकिन बेटे मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, पहले कहना चाहता था लेकिन भूल गया।
क्या है बोलिए।
जानते हो ना बेटा कि
तुम्हारी और हाजरा की महरमियत का वक्त खत्म हो रहा है।
जी हाँ।
ये भी जानते हो ना कि मुहर्रम और सफर करीब है।
जी हाँ जानता हूँ।
तो फिर किसी ना किसी तरह अहमद अली को बात करके तैयार करो कि ये काम अंजाम पा जाए, देर हो रही है।
जी अच्छा।
तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ है या अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो? अपना तरबूज तो खाते जाओ।
अकबर साहब।
बोलो।
मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए।
कितने दिन की छुट्टी चाहते हो?
जितने दिन मुमकिन हो सके।
दो हफ्ते ठीक रहेगा बेटा?
हाँ दो हफ्ते ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
अजीब आदमी हो तुम, अभी एक हफ्ता हुआ काम पर आया और दो हफ्ते की छुट्टी मांग रहे हो।
आपने ही तो कहा है दो हफ्तों का।
मैं सदके जाऊं।
अकबर साहब मेरे जिम्मे एक काम है जिसको अंजाम देना बहुत जरूरी है, मुझे हर हाल में अंजाम देना ही होगा। आप इजाजत नहीं देंगे तब भी मुझे जाना ही पड़ेगा।
सही कह रहे हो, दूसरों का काम जरूरी लगता है, मेरा काम गैर जरूरी है।
कुछ काम बहुत जरूरी हुआ करते हैं अकबर साहब।
देखो मुझे समझाओ मत और नसीहतें मत करो। तुमने मौलवियों का लिबास नहीं पहना है लेकिन हो वही।
अब क्या करूं, छुट्टी देंगे ना?
खुश नहीं जाना चाहते हो, जाओ बेटा, लेकिन इसका अंजाम तुम्हारे सर होगा, जाओ।
हाँ फरीजा इसी को कहते हैं कि इसके नताज की फिक्र ना करो और सब कुछ खुदा पर छोड़ दो।
फिर तुमने नसीहत देनी शुरू कर दी, मौका मिला नहीं और नसीहत देनी शुरू कर दी। जाओ जाओ यहाँ से, चलो। हाँ आए दो दिन हुए नहीं, दो हफ्ते की छुट्टी, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है।
कहाँ हो अभी तक तुम? तो आ जाओ ना पार्क में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा खुदा हाफिज। बरात अली आधे घंटे से वक्त जाया कर रहे हो, आखिरकार कुछ बताओगे भी या नहीं? आरश आ रहा है।
आओ एक मिनट यहाँ पर बैठो। देखो सुनो, मैं कहना चाहता था कि मैंने गलती की है ये वादा करके कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
क्या मतलब है, यानी सबको जाके सब कुछ बताना चाहते हो?
नहीं, अगर कहना चाहता तो मैं यहाँ बात करने के लिए पार्क में ना बुलाता। मैंने सोचा मुझ पर एक जिम्मेदारी है इसलिए बैठकर राह हल निकालते हैं।
तुम किसी को कुछ ना बताओ, यही तुम्हारी तरफ से बेहतरीन मदद है।
मोहम्मद हुसैन एक अच्छी राह निकल सकती है। हम चल के हाजी शहीद साहब से बात करते हैं, वो अहले इल्म हैं, वो बेहतरीन और आसान तरीन रास्ता हमको बता सकते हैं।
क्या तुम संजीदगी से बात कर रहे हो?
और क्या,
लगता है तुम पूरी तरह से अपनी अक्ल गंवा बैठे हो।
क्या कह रहे हो?
तुम्हें क्या लगता है अगर अब्बू के पास चले जाएं तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे खुदा पे भरोसा रखो और पुलिस को सब बता दो।
तो इसमें बुरा क्या है, क्या मुश्किल है?
इसमें मसला ये है कि मैं जेल चला जाऊंगा और रह जाएगी मेरी बीवी और मेरे करोड़ों के कर्जे जो मेरे सर पे हैं।
जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो पता नहीं वो कहां खत्म होगा। देखो मोहम्मद हुसैन, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन अगर हाजी शहीद साहब कोई राह हल निकालना चाहते।
तुम सिर्फ इतनी मेहरबानी करो कि इस वाकये के बारे में किसी से कुछ मत कहो।
मैं किसी से क्यों कहूंगा, मुझे सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है। ये जान लो कि इसे सिर्फ शहीद साहब ही हल कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि अपने वालिद से सलाह मशवरा करो बस।
कल मुझे उससे मिलने दो, फिर उसके बाद मैं इस बारे में फैसला करूंगा। तुम मेरे साथ आओगे कि नहीं?
नहीं आऊंगा।
अच्छा कहो ना, दो घंटे से मैं जो कुछ भी पूछ रहा हूँ वाजह जवाब नहीं दे रहे हो, बताओ ना असल मसला क्या है?
किसी ने हमें गलत इतला दी थी, बरात अली के साथ वहाँ गया मगर हमें नाकाम लौटना पड़ा। जरा देखो अब आज ही नेटवर्क नहीं मिलना था।
ये तो बेकार की बातें हो गई, कहा मजाक कर रहे थे, फिर कहा गए थे मगर वो आया नहीं, इसी तरह कहते रहोगे खाना भी खाया उसके साथ मगर हमें नहीं बता रहे।
आरश भाई उसने हमें धोखा दिया, वो नहीं आया।
देखो ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर कह रहा हूँ, नहीं चाहता कि तुम मुश्किल में पड़ जाओ। सलाम।
सलाम। तुमने बताया नहीं कि मेहमान आए हुए?
मेहमान नहीं, ये इसका अपना घर है।
ये तकल्लुफ था या जुमला कसा?
मोहम्मद हुसैन, बरात अली को लेकर अपने साथ इधर उधर मत घूमो। अगर अकबर साहब को गुस्सा आ गया तो फिर हाजरा की शादी बरात अली से नहीं होने देंगे। हाजरा ने फोन करके शिकायत की है।
मुझे उससे कोई काम ही नहीं है।
कैसे काम नहीं है, क्या तुम लोगों ने कल सुबह मिलने का वादा नहीं किया है?
अपनी बीवी को तो बता दो कि मामला क्या है।
ये एक जाती मसला है बरातली से मुतालिक।
जाती मसला? वो भी सुबह सवेरे, अभी तक नमाज नहीं पढ़ी क्या?
2 घंटे से वजू कर रखा है मगर भूल गया। या अल्लाह।
मैं खुद जवाब देता हूँ।
हेलो, सलाम अलैकुम हाजी साहब, आप ठीक हैं? जी हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जी हाँ, उसी सिलसिले में अगर मुमकिन हो तो।
नमाज का क्या हुआ?
हाँ,
क्या पता।
हाँ हाँ,
तुम्हें पता नहीं ये हालात कितने बिगड़ गए हैं।
क्या हुआ है?
अम्मी जान ने जाके अबू जान की शिकायत कर दी है।
सच कह रही हो? उनकी तबीयत चंद दिनों से खराब चल रही है, अभी उनको नहीं बता।
मायदा बेटी।
हा? सलाम हाजी साहब।
सलाम अबू जान। सलाम
बेटी, एक मिनट यहाँ आओ।
जी अभी आई।
तुम ठीक हो आरश बेटे?
जी हाँ, आप कैसे हैं?
अच्छा हूँ। बैठो बैठो।
जी शुक्रिया।
मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन अम्मी ने अपना फैसला कर लिया है।
देखो बेटी, इस मामले की फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारी माँ इस मामले को किसी ना किसी तरह हल कर ही लेंगे, पर तुम एहतियात से काम लो कि कहीं इसकी वजह से खुदा ना खास्ता उनकी बेहुर्मती ना कर दो।
जी अच्छा।
एक और काम ये करो बेटी कि कंपनी की काबिले फरोश चीज़ों और कर्जों और कर्ज खाहों की एक एक फहरिस्त बनाकर मुझे दे दो।
आपको किस लिए चाहिए?
अगर खुदा ने चाहा तो शायद इस मसले को हल कर सकें।
जी अच्छा।
लेकिन जल्द से जल्द, अब भी बहुत देर हो चुकी है बेटी।
आप बेफिक्र रहें।
ये कालीन लोगों के पैसों से खरीदे गए हैं। ये माल समझ रहे हो, हराम है हराम, और तुम इसे मुल्क से बाहर ले जाने में मदद कर रहे हो। जरूरी नहीं कि ये चीजें समझने के लिए इंसान आलिम हो।
मतलब ज्यादा से ज्यादा कल रात तक इनको मैं भेज सकता हूं।
खड़ी हो जाएगी।
कल रात जब यहां से हम निकलेंगे तो हो सकता है कल तक बंदरगाह हम पहुंच जाए। दस्तखत कर दीजिए।
मेरा फैसला बदल चुका है। चाहता हूँ कि यह कालीन हमारे शहर में ही वाकई एक गोदाम में भेज दें। जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आज ही भेज दें।
कोई मसला पेश आया जनाब?
नहीं, एक छोटा सा मसला पेश आया है। चाहता हूँ कि हमारे ही शहर से जुनूब की तरफ ट्रांजिट हो जाए।
जैसा मुनासिब समझे।
बस मैं चाहता हूँ कि आज ही भिजवा दें, समझे?
इजाज़त दीजिए, देखें क्या कर सकते हैं।
मोहम्मद हुसैन, अब मुझे इत्मीनान हो गया। मुझे लगा लोगों का माल उनको ले जाने के लिए दे रहे हो।
देखो बरातली, चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। इस मामले को ऐसे खत्म करना चाहता हूँ कि मैं लोगों के कर्जे भी दे सकूँ और इस मसले से अपने आप को मुकम्मल तौर पर निकाल भी लूँ। देखो तुम सही कह रहे हो, ब्लैकमेलिंग के पैसे में कोई खैर बरकत नहीं होती। अगर अब हम यह कालीन उसको भिजवा भी दें, फिर बाद में ना जाने इसे एक रसीद के बदले में हमें क्या करने पर मजबूर करे। मैं चाहता हूँ कि यह कालीन खुद मेरे पास रहें और उससे कहूँ कि या तो कागजात मेरे हवाले करें या दोनों साथ में जेल जाएंगे, इस तरह उसके हाथ एक पैसा भी नहीं आएगा।
यानी अगर कागजात तुम्हें दे दे तो तुम लोगों का माल उसके हवाले कर दोगे? हैं?
नहीं ना, यहाँ से अब तुम्हारा काम शुरू होता है। जैसा कि हमने तय किया था, हम जब उसे मिलने बुलाएंगे तो तुम उसका पीछा करोगे और उसका पता मालूम कर लोगे, इस तरह हम कामयाब हो
जाएंगे। एक बात बताओ।
बात का बाद में बताऊंगा ना।
बताओ।
हमने उनको गोदाम भेजने के लिए छोड़ा था, क्या तय नहीं पाया था कि रसीदों पर दस्तखत करके मेरे हवाले करें?
क्यों नहीं, तुम मजीद के पीछे तो नहीं पड़े?
कहाँ था, मैंने तो नहीं देखा उसे। लेकिन तुमने तो खुद ही कहा था ना कि माल वहीं रखवा दो, सबको लोड करके भिजवा देंगे।
मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, जाओ तुम अपना काम देखो।
चलो जल्दी
चलो।
اینجا برای سمه